आजकल वार्ता का क्लास धीरे धीरे ठंडा होता है। आरव लिंगम के बारे में क्या प्रश्न है? तत्विया ज्ञान की ज्योति, विशेष ज्ञानी तो आत्माएं हैं जिन्होंने बाप के ज्ञान को विशेष धारण किया हुआ है, अथवा परमात्मा बाप जिनमें विशेष रूप से प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। जोर से बोलो, सब सुनो।
अभी बोल रहे कुछ राजा ऐसे होते हैं जो उधार लेकर के अपना राज्य चलाते हैं।
जैसे यहाँ बेसिक नॉलेज में बहुत से ऐसे हुए कि ब्राह्मणों का जो काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और मंथन करके नई नई बात निकालना, वो काम नहीं किया, मान मर्तबा लेकर के बैठ गए। तो जो असली पुरुषार्थ है वो किया नहीं, और वो असली पुरुषार्थ कोई बैगरी पार्ट बजाने वाली आत्मा ने कर लिया। वो कंट्रोल ही करते रह गए। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, राजाई चलाना, डायरेक्शन जानना, इससे भाग्य बनता है या बिगड़ता है? बिगड़ता है। यहां तो ब्राह्मणों का बाप खुद कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप बच्चों का सर्वेंट बनकर के आया हुआ है, और बच्चे अपनी राजाई समझ करके बैठ जाए कि सबको मेरे कंट्रोल में चलना है, तो उनका भाग्य बिगड़ जाता है। जो सच्ची कमाई करना चाहिए वो सच्ची कमाई नहीं करते, झूठे ही एक जन्म के मान मर्तबे में फंस जाते हैं। तो उनके ऊपर जैसे ईश्वरीय सेवा का कर्जा चढ़ता है, और जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो बाजी मार जाते हैं। इसलिए बोला, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले अर्थात जो सरेंडर होकर के चल रहे हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं हम तो ईश्वर के बच्चे बन गए, ईश्वरीय कार्य में सरेंडर हो गए, हमारा दुनियावी धंधे धोरे से कुछ लेना देना नहीं, और अंदर से मान मर्तबा लेकर के बैठ जाते हैं। तो दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, फिर ऐसों की प्राप्ति कट हो जाती है। तो सत्युग के आखिरी जन्मों में राजाई पद तो पावेंगे, लेकिन वो राजाई उनकी डूब जावेगी, कर्जे में डूबेगी। यहां उसकी शूटिंग हो जाती है, सेवेंटी सिक्स में राम वाली आत्मा विश्व का मालिक घोषित हो जाती है, और उन्हें एहसास होता है कि हमने जो प्राप्ति करनी थी वो नहीं कर सके, हम घाटे में आ गए। वो बुद्धि चक्रित तो हो जाती है, इतना चक्कर खा जाती है कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है। तो शूटिंग के हिसाब से सत्युग का जो आखिरी महाराजा बनेगा उसको अपनी सारी राजाई कर्जे के आधार पर राम वाली आत्मा को सौंप देनी पड़ेगी। कुल कलंकित तो बन जावेंगे, नारायण का कुल, नारायण का राज्य खलास और राम का राज्य शुरू हो जाता है। साढ़े चार लाख में से
अफ्रीका
जी
तो पुरानी दुनिया का बीच में से नया दुनिया की स्थापना है,
कुछ आत्माएं बुद्धि योग से ही परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेती है। जो बुद्धि योग से इस सृष्टि पर परम धाम को उतारती है उनकी संख्या है 4.5 लाख। राधे कृष्ण वाली आत्माएं, राधे कृष्ण वाली आत्माएं तो उनमें प्रवेश होकर के पाठ बजाती है, तो संग का रंग लग जाता है, नंबर वार संग का रंग लगता है। वो बुद्धि की स्टेज उनकी ऐसी बन जाती है, जो आधार की स्टेज वो आधे की स्टेज।
तो 9 लाख
परमधाम की स्टेज का अनुभव कर लेते हैं, इसलिए 2036 तक जनसंख्या कितनी हो जाती है 9,16,108। बाकी लास्ट में तो सबको एक साथ जाना ही पड़े।
9 लाख नहीं जाएंगे,
जाने आने की बात कहाँ होती है, वो तो बुद्धि की स्टेज की बात है। अभी भी कोई अनुभव करते हैं कि हमारी बुद्धि की स्टेज बहुत ऊंची बनती है, बहुत अनुभव करते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बुद्धि ऊपर टिकती नहीं, नीचे आ जाती है। देह के और देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर जाती नहीं, इसलिए कपाल को कहते हैं सहस्त्रसार, कि मनुष्य के शरीर में ही ब्रह्मांड है। वो ऊपर है या नीचे है? आत्मा की ऊंची स्टेज की बात है, नहीं तो ये बात मुरली में नहीं कही जाए कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। पांच सौ सात सौ करोड़ आत्माएं तो जाएंगी ही परम धाम की स्टेज में।
जाएंगे जाने के समय, लेकिन आने में नंबर वार।
तो अभी आप कह रहे हैं कि 9 लाख
तो जाएंगी
नहीं। कहाँ नहीं जाएंगी? बुद्धि की स्टेज अगर ऐसी परम धाम की स्टेज निराकारी स्टेज बन गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाए तो जाने आने की बात रह जाती है क्या?
भगवान
है ब्रह्मांड, माना कोई ऐसा स्थान नहीं है अलग से, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परमधाम है, तो कोई एक दिशा में है, ये चारों ओर है। आत्मा एक दिशा में रहेंगी झाड़ बना करके या ऊंची स्टेज की बात है। पृथ्वी के पांच तत्वों से परे होने की बात है।
तो चित्र में जिस बताया गया है शांतिदान्त चित्र में,
वो तो समझाने के लिए वहां भी गोल चक्कर दिखा दिया है। ऐसा गोल चक्कर इसीलिए दिखा दिया है कि परे से परे स्टेज की बात बताई गई। जैसे पौधे हैं, पेड़ हैं, इनमें भी आत्मा है, लेकिन ठेठ जड़ तुम्हें आत्मा है। वो आत्मा पृथ्वी के वलय के नजदीक रहेगी और बुद्धि में जो जितनी तीखी होंगी वो उतनी दूर रहेंगी, कम बुद्धि वालों को घेर करके रहेंगी। इसलिए ईश्वर कहा जाता है। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। तो नंबर वार श्रेष्ठ शासन करने वाले होंगे। सुप्रीम सोल है ईश्वर, सुप्रीम गॉडफादर, उसकी सुपरमेसी को कोई काट नहीं सकता। प्रजापिता वाली आत्मा भी नहीं काट सकती, वो परे थी परे की स्टेज में रहने वाला है। फिर है नंबर बात, नंबर बात वो 500-700 करोड़ आ जाते हैं।
सत्ययुग में सोना चांदी नहीं रहेंगे, अभी
नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे है तो कभी कहा नहीं।
ऐसा स्थूल तरीके से कुछ नहीं रहेगा,
उनका सूक्ष्म में उड़ता हुआ होगा, स्थूल ही होगा। अभी सारी खानियां जब त्रेता युग के अंत में अर्धविनाश हुआ तो सारी सोने चांदे हीरे जवाहरातों की खानियां जमीन के अंदर चली गई। अभी संपूर्ण विनाश होगा तो खानियां फिर से भरती हो जाएगी, अंदर का बाहर और बाहर का सब अंदर हो जाएगा। और
तब उसका वैल्यू रहेगा
बाबा जी,
सत्युग त्रेता युग में तुम
अरे भरपूर होगा,
भरपूर तो होगा उसका वैल्यू।
यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों पे, जौहरियों की बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो थोड़ा देखने को मिलता है, और वहाँ तो ढेर के ढेर लगे पड़े होंगे।
किस तरीके से यूज करेंगे, अभी सोने की महल नहीं पड़ेंगे, वस्तु भी नहीं रहेंगे।
महल किस लिए बनाए जाते हैं, कोई कारण होता है?
ठीक है, वो रतन ये सब किस तरीके से यूज करेंगे?
पहाड़ है, पहाड़ में प्राकृतिक रूप से गुफा बन गई बड़ी, उन गुफाओं में ढेर सारे लगे रहेंगे जो चमक मारते रहेंगे।
उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाएंगे?
आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं बनाई जाती वहां, सब काम प्रकृति मुहैया करती है, प्रकृति दासी बन जाती है।
स्टैचू तो नहीं दिखाते परंतु कई लोग पत्र पर दिखाते लक्ष्मी पार्वती सरस्वती बताते, ये भी वैष्णो देवी।
हाँ वो आत्मिक स्टेज को प्राप्त करती है, इसलिए उनकी आत्मा की स्टेज दिखाई है। और
ठीक है, कैसा है त्रेता युग के अंतिम में 33 देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता रहता है। एक्चुअली कितने देवी देवता रहता है?
पहली बात मुख्य ये है कि वीके और पीवीके में ये भारी अंतर है कि पीवीके जो है वो बाप की वाणी को पकड़ते हैं। क्या पीवीके के पास बाप की वाणी की पकड़ है और वीके के पास ब्रह्मा की पकड़ है, इसलिए वाणी को वो भूल जाते हैं। मुरली में लिखा है त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ आबादी होगी, और बोला है कि कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती है। फिर बोला है 33 करोड़ में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक नीचे उतरती है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का नीचे उतरना बंद हो जाता है। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार देखे जाते हैं विरल, जो हुजूम के हुजूम एक ही परिवार में पल रहे हैं, एक उनका मुखिया होता है और मुखिया की बात टालने की कोई में हिम्मत नहीं होती, और उस परिवार में इम्प्योरिटी देखने में नहीं आती। ये पारिवारिक व्यवस्था जो भारतीय सनातन धर्म की पुरानी से पुरानी व्यवस्था है, वो धर्म कभी लोप नहीं होता। क्या प्रायः लोप होता है? प्रायः लोप होने का मतलब बहुत करके लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रहता है। अगर बीके वालों की बातों में जाएं, तो त्रेता के अंत से देवी देवता सनातन धर्म खलास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और
बाबा गीता है सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं,
सर्वशास्त्र शिरोमणि। हाँ जी, बोलो बोलो, धड़ाके से बोलो।
तो बोलिए सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं, इसका मतलब
सर्वशास्त्र शिरोमणि का मतलब क्या है?
शिरोमणि
सर्वशास्त्रों का जो सिर है, उन सिरों की भी ऊपर की मणि है, माने सर्वोपरि है। लेकिन गीता जब खंडित हो जाती है तो उससे नरक बनता है, और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। ये छाप पड़ती है दिल के ऊपर, जिस गीता के ऊपर कृष्ण आत्मा की छाप पड़ जाती है, यही गीता का साकार भगवान है। और दुनिया में कोई भी गीता का साकार भगवान हो नहीं सकता। ये दिल के ऊपर छाप बैठ जाती है। तो वो हो गई झूठी गीता। उस झूठी गीता के कंट्रोल से दुनिया नरक बनती है, और जिस गीता के दिल पर छाप बैठी हुई होती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का साकार भगवान है, वो गीता जब स्टेज पर आती है तो आने मात्र से ही एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है।
ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, उसी को मां बाप कहते हैं।
हाँ जी,
विक्रमाला में विक्रमाला और विष्णुमाला दोनों बोल जाते
हैं। हाँ जी,
विष्णुमाला को भी बीच
है,
विष्णुमाला को बीच करते हैं।
और सारी दुनिया के फीमेल बीज तो है, जैसे कोई भी वृक्ष के बीज बोए जाते हैं, मान लो पपैया ही है, पपीता, तो गोल गोल दाने तो सब एक जैसे देखने में आते हैं, लेकिन कोई दाना ऐसा होता है जिसमें फूल ही फूल निकलते हैं, फल नहीं लगते, वो नर वृक्ष बन जाता है। और कोई दाने से ऐसा बीज वृक्ष तैयार होता है जो फल ही फल निकलते हैं। वो मादा वृक्ष हो जाता है। तो 4.5 लाख जो अपने शरीर से कंचन काया बनावेंगे, उनमें आधे नर बीज और आधे मादा बीज।
बाबा, आप चलने वाले मतलब मर जाएंगे तो कंचन काया कैसे बनेगा?
एडवांस में चलने वाले कोई मरते नहीं है, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। जैसे कहते हैं लक्ष्मण को क्या हुआ, थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, संजीवनी बूटी सुगाई जाती है तो फिर होश में आ जाती है। तो होश में आने और बेहोश होने की बात है, बाकी अमरनाथ के बच्चे कभी मरते नहीं है।
अभी जो मुरली में इनको अनुभव है, ये बता सकते हैं ये शिव इसमें कब प्रवेश हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ? ब्रह्मा को दिया कह रहे हैं ना, तो ब्रह्मा कब बताया है?
ब्रह्मा अपन को समझते थे कि नहीं समझते थे कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है, और मुख से कहते थे या नहीं कहते थे? हैं? नहीं कहते थे, कहते थे। ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा समझते थे या नहीं समझते थे? ब्रह्मा अस्मि ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी बुद्धि में था या नहीं था? था। शिवो हम ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी वाचा से सुनने वाले सुनते थे या नहीं सुनते थे? कि शिव का साकार स्वरूप मेरे स्वरूप के द्वारा है।
तो ऐसे जिक्र मुरली में भी मिलता है?
आज जब मिलता है तो इससे क्या साबित हुआ? इसलिए मुरली में बोला है इसे ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, इसका चित्र रखेंगे तो इसका चरित्र तुम बच्चों के अंदर आ जाएगा, तुम बच्चे भी शिवो हम बन के बैठ जाएंगे, ब्रह्मा आस में बन करके बैठ जाएंगे।
ایسا کون سی پوائنٹ ہے بات کو ٹیلی ہونے کا
کیا
کنڈلی میں
کیا
برہما خود کہتے تھے ہمارا ایشو ہے
کوئی بھی مرلی اٹھا لو ہر ایک مرلی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برہما اندر سے یہ سمجھتے تھے کہ شیو میرے میں پرویش ہے شیو کے ساتھ میں کھاتا ہوں پیتا ہوں کھیلتا ہوں کوئی پریکٹیکل میں کھانے پینے کی بات تھوڑی ہے ہاں بولتے بھی تھے اور برہما بھی سمجھتے تھے بولتے بھی تھے
پرجاپتا برہما ہے نا وہ نہیں کہتے
ہیں وہ تو پرجاپتا ہے
وہ برہما نہیں کہتے نا وہ بولتے
وہ تو پرجاپتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں اپن کو کہوں گا کہ میرے اندر شیو ہے میں برہما ہوں میں شنکر ہوں اگر یہ کہیں گے تو مرلی میں کیا بولا ہے ہرنا کا سب ثابت ہو جائے گا کہنے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی بھی بات ہے
بابا نے کس گیت کا گن گایا
ہے
بابا کہتے ہیں نا گیتا کا گن گایا
جس گیتا کا گن گایا وہ سچی گیتا ہوگی ویبھیچارنی گیتا ہوگی یا ویبھیچاری گیتا ہوگی
سچی
گیتا کیسی ہوگی سچا کس آدھار پر کہا جاتا ہے سچا اور جھوٹا بھوجن رکھا ہے اسے دو چار بندر آ کر کے کھا جائیں کیا کہا جائے گا جھوٹا جھوٹی گیتا سے بنتا ہے نرک اور سچی گیتا سے بنتا ہے سورگ سچی گیتا ہے شیو کی گیتا اور جھوٹی گیتا ہے کرشن کی گیتا یگ کے آدھ میں بھی پرجاپتا کے شریر چھوڑنے کے بعد کون سی گیتا کنٹرولر تھی یگ کے آدھ میں پرجاپتا کے جانے کے بعد یگ میں کنٹرولر کون تھی دو ماتاؤں میں سے بھی کنٹرولر کون تھی وہ گیتا ماتا کے اوپر کرشن کی چھاپ تھی یا یگ کے آدھ والے ویکتتو کی چھاپ تھی تو جھوٹی گیتا ہوئی یا سچی گیتا ہوئی آنا کیوں نہیں کرتے
بابا جب تیسری مورتی آ جاتی
ہے
جب تیسری مورتی آ جائیں گے تب اسنان نہیں کرتا اسنان کی درکار نہیں
کیوں گیان کی درکار ان کو نہیں رہے گی جو کرماتی تھی اسٹیج کو پالیں گے ایسے تھوڑے کہ سب کو نہیں رہے گی پوجا دکھاتے ہیں لیکن ٹوٹی ہوئی ہاں جی مطلب یہ ہوا کہ ان کے کوئی سہیوگی نہیں رہتے ہیں کوئی ٹائم جب تک مالا تیار نہ ہو جائے مالا بننے کا یہی طریقہ ہے کہ پتہ لگے کون کہاں تک سہیوگی ہے
بابا تین سیٹس جو فکس ہے تین سیٹس جو فکس ہے برہما باپ جگدمبا اس میں برہما کو ویشنو دیوی کو کہا جاتا ہے نا پہلے برہما باپ جگدمبا کہتے ہیں نا تین سیٹس جو فکس ہے اس میں برہما جو ہے برہما کو ویشنو دیوی کو کہا جاتا ہے
نہیں ब्रह्मा के भी पांच मुख दिखाए जाते हैं, उनमें एक मुख तो ऐसा है जो सुनने सुनाने वाला है और सुनने सुनाने वालों का मुखिया है। क्या? सिर्फ सुनता है और सुनाता है, बाकी फिर नंबर वार है। जो सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं है, कुछ न कुछ समझते भी हैं और समझाते भी।
तो अभी वो तीन सीट्स साकार में कौन
है?
ब्रह्मा बाप जगदम्बा जो तीन सीट्स है, तो साकार में तो चाहिए ना ब्रह्मा।
वो रुद्रमाला के अंदर की बात कही होगी या जो माला अभी मैदान में ही नहीं आई है उसकी बात कही होगी?
मद्रास में पहले ऐसे ही करते थे ना, ब्रह्मा मना विष्णु देवी को कर।
ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, विष्णु कोई एक व्यक्ति नहीं है, विष्णु माने चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन। वो चार आत्माओं को भी चलाने वाला कोई और है,
वो बाबा।
हाँ जी,
विष्णु को ब्रह्मा बोला है, तीन से फिक्स हुआ ना, ब्रह्मा बाप और
जगदम्बा। साकार में तो वही हो
है,
तब ब्रह्मा माना साकार में तो वही।
नंबर बार बोला है तीन सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। तो असली ब्रह्मा कौन हुआ? जो पहले पहले काम करके दिखाता है। वो सर्वोपरि हो गया। फिर दूसरे नंबर पर कौन हुआ? तादर एक रथ कैसे हो जाएगा? जो जितना हो जाएगा उतने ही नंबर पे आके नीचे जन्म लेगा। हाँ जी, जो प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाए।
ब्रह्मा की जगह में गीता माता आ गया, तो फिर जगदम्बा की जगह
कौन सी? गीता माता, गीता भी कौन सी गीता? जो काम संपन्न करके दिखाए, ये सिर्फ गायन मात्र बन करके रह जाए। एक होता है ज्ञान धारण करना और एक धारण किया हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। तो असली धारणा कौन सी हुई? जो समझे भी और दूसरों को भी समझाए। प्योरिटी होती है तो खुद भी समझता है और दूसरों को भी समझाने में अव्वल नंबर जाता है। प्योरिटी में तराप आती है तो लोगों को प्रश्न पैदा होता है, ये कैसा? तो सर्विस होगी कि सर्विस होगी? लोगों की बुद्धि में बात बैठेगी, ये अनिश्चय पैदा होगा। एक आत्मा है ब्राह्मण परिवार की यूनिटी बनाने वाली और एक आत्मा है निमित्त बनती है, बनी बनाई यूनिटी उसको उड़ाने वाली। महागौरी और महाकाली, इन दोनों पार्ट्स में क्या अंतर है? जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं।
अब मूर्ति चेंज हो गया।
क्यों चेंज हो गई?
अभी आपने बताया।
क्या बताया? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा।
ब्रह्मा किसको बोलते हैं?
जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है अव्वल नंबर में। वो अव्वल नंबर में विष्णु बनता है। जो सत्युग में राधा कृष्ण होंगे और संगम युग में जो राधा कृष्ण होंगे उसमें अव्वल नंबर कौन? फिर हाँ जी
बली में दो आवाजों में भी शिव की प्रवेश।
वैसे भी बता दिया है कि शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों सहज हो जाता? हाँ, क्योंकि वो असुर संहारिणी महाकाली का पाठ बजाती है। कौन? जगदम्बा। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये तीन सीट्स फिक्स हुई है।
क्या?
विश्व बैंक।
स्विस,
स्विट्जरलैंड की बैंक, यहाँ बेहद की घड़ियां बजती है, घड़ी बनती है ना, जहाँ की घड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, स्विट्जरलैंड की घड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, तो हद की भी है और बेहद की भी है। बेटी घड़ी का पता नहीं है
तो बड़ी बड़ी हुई
छोटी। क्या बोला?
आप लीन नहीं होता, अगर लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए।
सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, आत्मा पानी का बुलबुला है, बुदबुदा। सागर में जो बुलबुले छूटते हैं ना, वो गोल गोल पड़ जाते हैं, इसमें हवा भर जाती है पानी की, बुदबुदे कहते हैं हमको, बुलबुले।
बबल्स
है,
बबल्स कहते हैं।
स्पाइस। तो कहते हैं कि आत्मा एक बुदबुदा है, जो सागर में से बुदबुदा उठता है और सागर में लीन हो जाता है। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लिया तो ये है आत्मा और सागर है परमात्मा। ये चुल्लू पानी सागर में मिला दिया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, वो चुल्लू पानी सागर बन गया। कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है क्या? सागर खारा है, सागर में से जो चुल्लू पानी लिया जाएगा वो भी खारा होगा। उस खारे पानी को सागर में मिला दें, कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, हर 5,000 साल के बाद ज्यों का त्यों पाठ बजाती है वापस आकर। तो लीन कैसे हो जाएगी? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्मृति में लीन हो जाती है, वो सदाकाल के लिए नहीं, नंबरवार अल्पकाल के लिए मन मना बहु हो जाती है। कोई आत्मा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में रहती है और कोई आत्मा बहुत थोड़े समय के लिए निराकारी स्टेज में रहती है। जितना निराकारी उतना निर्विकारी और निरहंकारी।
मुंबई
है,
मुंबई में
है,
सागर की पानी मीठा हो गया, न्यूज में बताया।
वो क्या है? बरसात ज्यादा हुई, बहुत बरसात होने से बंबई में पानी इकट्ठा हो गया और सागर में ज्वार और भाटा आता है, तो जब ज्वार आया तो सागर का पानी किनारे पर उछाल मारता है और इधर का इधर से बरसात का पानी समुन्द्र में पहुंचता है, निकलने का रास्ता मिलता नहीं। तो सागर में जो पानी वहां पहुंचा उन्होंने समझ लिया कि वहां मीठा हो गया।
गुरुद्वारा या कुछ नजदीक है उसके लिए वो गुरु कृपा से हो गया है।
तो सब कहने की बात है ना।
बाबा भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है और ब्राह्मण दुनिया में कहते हैं भगवान एक व्यापी है।
भगवान एक व्यापी नहीं,
एक व्यापी कहते हैं, कहते हैं बाबा।
क्या कहते हैं?
एक व्यापी।
ब्राह्मणों की बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कहते नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर उनसे पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है तो बताते हैं? क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। वो समझते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। भगवान के अंदर तो आता, भगवान तो ब्रह्मा के अंदर आता था, ज्ञान सुनाकर चला गया, अब स्वर्ग कौन बनावेगा? तो भगवान कौन हुआ? मनुष्य नरक की दुनिया को स्वर्ग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो प्रैक्टिकल जीवन उनका ऐसा बन जाता है कि वो शिवो हम समझ के बैठ जाते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी समझ के बैठ जाते हैं। भले मुख से कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब उनसे बताया कहा जाए कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो बताओ, तो चुप्पी साध जाते हैं। क्योंकि अष्टदेव ज्यादा पावरफुल होते हैं संगम युग में, या अष्ट रतन ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो सूर्यवंशी की विशेष आठ आत्माएं हैं उनको भगवान बाप का सहयोग मिलता है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण उन अष्ट रतनों में प्रवेश करके पाट बजाती है। तो प्रवेश करने के कारण वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उस अंतिम समय के पार्ट की यादगार में बता दिया गया है कि अष्टरतन के ये गुण हैं, अष्टदेव के ये गुण हैं और दोनों के गुण समान हो जाते हैं।
उदयनगर में क्या
होता है? उदयनगर है, उदयनगर में सूर्योदय होना चाहिए।
उल्टा
हो गया क्या? चंद्रोदय हो गया? कलियुग की शूटिंग में दिखाई नहीं पड़ा है? हाँ जी। और तुम जोर से बोलो जो कान में आवाज पड़े। हाँ हैं? और क्या, किसके पैसों से बना है? भगवान क्या ऊपर से लाता है? ब्रह्मा बाबा क्या ऊपर से लाए थे? कहाँ से लाए थे?
वो खुद मेहनत करके
कमाया था उन्होंने। और दशरथ पटेल भी कहते हैं भगवान भीख मांग के पहले कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करेगा। क्या भगवान जो है अपने तन बंधन से स्वर्ग की स्थापना करता है। ये पाठ मेरा है। क्या मैं किसी से धन दान नहीं लेता, अपने ही कमाए हुए तन बंधन से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ।
माया को सर्वशक्तिमान कहते हैं इसलिए तो माया तो बाप का काल में विघ्न डालता है।
तो विघ्न डालने में ही सर्वशक्तिमान है। भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, माया सर्वशक्तिमान नहीं है तो विघ्नों को रोक दे। वो 70 साल से नाक क्यों रगड़ रहा है? है और भस्मासुर के डर से भागा भागा क्यों फिरता है? कंस के डर से गांवों गांवों में छुपा हुआ क्यों फिरता है? कांटों के जंगलों में बंदरों के बीच में क्यों रहता है? मैदान में आए ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं।
तो फिर ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर
है?
फिर ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर
ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो वही है जो पर्दे के पीछे रहता है, देखने में नहीं आता।
किसी जन्म में भी राजा का पीछे पीछे चलता है, माने नीचे से पूछा जाता है। तुलसीदास शिवाजी झांसी लक्ष्मण और त्रेता युग में राम की प्रजा शावकर से जाते हैं। किसी का राजा का कुछ बनते नहीं,
बनी बनाई लेना चाहिए या अपना कमा के खाना चाहिए? ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? अपना कमा के खाना ज्यादा अच्छा है या कमा कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा है? अपना कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा
है।
भगवान को भी आराम करने की दरकार है। रामबाली आत्मा भगवान नहीं होता है? हाँ तो संगम युग में भी वो संघर्ष ही करता रहता होगा। है संगम युग में भी राम वाली आत्मा हर समय संघर्ष करने में मजा लेती होगी।
संघर्ष तो अच्छा है, देखने वालों
को। सत्य और असत्य का संघर्ष महाभारत युद्ध है। सत्य और असत्य का संघर्ष रामायण का युद्ध है। सत्य और असत्य का संघर्ष देवासुर संग्राम है। तो ये धर्म की स्थापना करना कोई खराब बात है क्या? सत्य धर्म की मेहनत गाएगी, कोई अरे सुख आत्मा भासती है या शरीर को सुख होता है?
तो शरीर के बिना तो सुख नहीं भोग सकते ना।
अच्छा करोड़पति लखपति और मल्टी मिलियनेयर है उनके शरीर को ज्यादा सुख होता है या जो कंकड़ों पे लेटते ही सो जाता है उसको ज्यादा सुख होता है? तो फिर
अभी मम्मी चलाए
क्या? नहीं बोला सुनाई थी तो चल रहा है अभी। ब्रह्मा बाबा जब आखिरी दम पे आ जाते हैं 67-68 में तो गुड नाइट बोलना शुरू कर देते हैं। और अव्यक्त वाणी में तो लगातार गुड नाइट ही बोलते हैं।
जिसका तपस्या संपूर्ण हो गया सुखधाम चले जाएंगे।
सुखधाम सीधे थोड़े चले जाएंगे, तपस्या पूरी होगी तो पहले शांति धाम जावेंगे या सुखधाम जावेंगे?
तपस्या
पहले तो सुखधाम नहीं जाना पड़े, पहले शांति धाम बाप के घर में जाना पड़े,
वहाँ में तपस्या
है, वहाँ का जी वहाँ का सुखधाम होगा
तो बाप का सुखधाम जाएंगे ना।
ठीक है, जो जाने योग्य होंगे विजय माला के मणके बनेंगे, पांच विकारों पर जीत पहनेंगे, वो जाएंगे।
अकेले जाएंगे जो जाएंगे,
बिना युगलों के तो कोई जाने वाले है ही नहीं।
तो दोनों जाएंगे,
जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जाएंगे, और जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जोड़ी जाएंगे।
तो पहले पहले युगल बनते थे लक्ष्मी नारायण का,
आत्मा की बात है या शरीर की बात है? दोनों का। जो बच्चों की पैदाइश होगी वो आत्म के बल से पैदाइश होगी या शरीर के अंगों से आंख वगैरह से होगी? आत्मबल से ही होगी ना। तो सारी जो शक्ति है वो आत्मा की है।
तो इसका पहले भद्रमाला विजय माला जो जो बन जाए तो,
इसलिए बोला है आधे पाप आत्मा और आधे पुण्य आत्मा रह जाएंगे। जाएंगे कहाँ, वो तो आत्मिक स्टेज की बात है।
तो सिंगल सिंगल जाएंगे,
सिंगल सिंगल जाएंगे, वो तो देवान भरा पड़ा है, बात ही नहीं बुद्धि में बैठती।
रुकिए बाबा, स्थिति जब बन जाएगा तब युगल रुक नहीं जाएंगे, सुखधाम शरीर।
अरे आत्मिक स्थिति में जुदाई महसूस नहीं होती है, जिनको देवान होता है उनको जुदाई महसूस होती है। जब तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तो भगवान बाप नजदीक रहेगा या दूर रहेगा? नजदीक रहेगा। तो ये कहेंगे कि शरीर छूट जाएगा क्या?
तो बिजी माला के आत्मिक स्थिति में जाएंगे, शरीर स्थिति में जाएंगे।
शरीर शरीर लगा हुआ है, अंत में ऐसी स्टेज होगी कि शरीर का भान रहेगा ही नहीं। और
16,000 प्रिंस प्रिंसेस
जी
बनेंगे बोला है।
हाँ जी,
तो सतयुग में 8 राजाएं हैं, तो 8 के 2-2 बच्चे हुए तो भी कितने होंगे?
16 हुए।
त्रेता में 12,
तो
12 × 2 = 24।
24 कैसे, वहाँ तो ढेर राजाएं होंगे।
ढेर कहाँ,
सतयुग में महाराजाएं होती है, महाराजा सिर्फ एक ही होता है एक जन्म में, और त्रेता में महाराजा नहीं होंगे, सम्राट नहीं होंगे, क्या होंगे? राजा होंगे, और वो अनेक तादाद में होंगे, तो उनके प्रिंस प्रिंसेस भी अनेकों की तादाद में होंगे।
अनेक माना 16,000 हो जाएंगे।
8 × 16 = 16,000।
तो द्वापर में क्या बनेंगे?
द्वापर में क्या बनेंगे?
द्वापर में तो और भी राजाएं होंगे फिर।
द्वापर में भी महाराजाएं होते हैं भारत में, कलयुग में फिर राजाएं होते हैं,
तो वही प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे।
और क्या, कोई नई जनरेशन शुरू करना है क्या?
में सब अपना अपना पार्ट का संतुष्ट होंगे, बताए रावण भी बहुत अच्छा निधन का पार्ट बजाए, उसी तरफ पर्दा खोलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है, ऐसा भी बताया। फिर रोने वाला है तो फिर अपना पार्ट पर संतुष्ट करना है।
ड्रामा में रंगमंच में कोई विधवा का पार्ट बजाती हो, विडो का पार्ट बजाए, और विडो का पार्ट बजाते समय उसे हंसी छूट जाए, रोना ना आए, तो पार्ट अच्छा कहा जाएगा बुरा कहा जाएगा? है बुरा कहा जाएगा ना। तो जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो तो पार्ट उसे बजाना ही पड़े। रावण का नाम ही है रावण, तो किस आधार पर रावण नाम पड़ा? जो दूसरों को रुलाता है, रुलाने वाला खुद रोता होगा कि नहीं रोता होगा? इसलिए बोला है कि पुरुष अंदर से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते, और माताएं आंसुओं से रोती हैं। इसलिए जो रोने वाला रावण है, रुलाने वाला है, उसको रोना लाजमी है, उसका पार्ट है। जब ड्रामा खत्म हो जाएगा तो रंगमंच ही नहीं रहा, तो बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा।
पापा, रावण का सिंह पर गदा के चक्कर में ब्रह्मा को बताना।
रावण के सर के ऊपर गदा कौन है?
ब्रह्मा को बताया।
किसने बताया? रावण के सर पर जो गदा दिखाते हैं, वो गदा किसका पार्ट है? क्या बाबा ने बताया है? मुरली में तो आया है कि रावण के सर के ऊपर गधे का पार्ट होता है। गधा जो है उसकी खासियत क्या बताई है? कपड़ा धोने का काम तो वाशरमैन का है, धोबी का है। धोबी तो शिव बाबा है, है? हाँ, जो गंदे संदे कपड़े होते हैं वो गधे की पीठ पे लाद दिए जाते हैं। उन गंदे कपड़ों को यज्ञ के आदि से लेकर के और संक्षेत्र तक धो करके कौन लाता है? अरे अपनी पीठ पर धो करके कौन लाता है? इनके ऊपर तो जिम्मेवारी बहुत है। तुम बच्चे हो तो मेरे से भी याद में ज्यादा तीखे जा सकते हो, तो ज्यादा वजन किसके ऊपर हुआ? गदा कौन हुआ? कौन बता रहा है?
तो विष्णु का चार भुजा में गदा बन जाते
हैं।
है? वजी ब्रह्मा के आत्मा विष्णु का चार भुजा में गदा बनते हैं।
चार भुजा में गदा नहीं होता है,
वो गदा नहीं
ना विष्णु का गदा। भुजाओ में जब आता है तो गदा नहीं कहा जाता है। जब युद्ध करते हैं तो एक होता है धनुष बाण, तीखा बाण लगता है, नुकीला बाण, और जो गदा होता है उसमें नोक नहीं होती है, तीखापन नहीं होता है, वो सीधा सीधा चलाया जाता है। क्या? तो ऐसे ही जो ज्ञान है, एक तो होता है सीधा सीधा ज्ञान सुनाना और एक होता है तीखी बात मारना, तो फर्क होता है दोनों में। त्रिशूल में तीन बाण दिखाए जाते हैं, राम को बाण दिखाए जाते हैं, और गदा किसको दिखाया जाता है? हनुमान को या राम को? क्यों? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, उनको पहले से पहचान बता दी थी कि ये बूटी की ये पहचान है, उन्हें याद नहीं रहा। नहीं याद रहा तो गदा बुद्धि हुई या तीखी बुद्धि हुई? तो हनुमान को बाण नहीं दिखाया जाता, क्या दिखाया जाता है? गदा दिखाया जाता, सीधा सीधा लिया और मार दिया।
व्यास नारायण बनता है, नारायण भी व्यास बनता है। देखो जैसे ब्रह्मा वशिष्ठ बनता है, ब्रह्मा वशिष्ठ बनता है क्या?
हाँ, ब्रह्मा तो किसी के रूप में जन्म लेता ही है,
वो वशिष्ठ
वशिष्ठ
क्या बनते वशिष्ठ बनता है?
शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि राम का गुरु कौन था? वशिष्ठ। तो जो विशेष रूप से पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठ गया, उसको फिर नाम रख दिया वशिष्ठ जी कहते हैं राम को, हे राम ये संसार जैसे बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुद तो उन्होंने आराम से चैन की बंसी बजा करके सारा पुरुषार्थ कर लिया। किन्होंने? कष्ट वाली आत्मा ने। और राम के लिए कहते हैं तुम ऐसे समझो जैसे दुनिया बनी ही नहीं, क्योंकि उनको अपने जीवन में संघर्ष करना है, इसलिए उनको ये पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए दो ऋषि विशेष दिखाए जाते हैं, एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र। विश्वामित्र को क्षत्रिय दिखाते हैं और वशिष्ठ को ब्राह्मण दिखाते हैं। क्या? जो वशिष्ठ जी हैं वो गऊ के स्वामी हैं, गऊ का स्वामित्व उनके हाथ में है। विश्वामित्र के पास वो गऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने मांगा वशिष्ठ जी से, ये गऊ हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, हम नहीं देते तुमको। अगर नहीं दोगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, जो कुछ करना उसे करो। विश्वामित्र ने अपने वाहन और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ना शुरू कर दिए, उनके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार चले गए। वो जो अस्त्र शस्त्र फेंकते थे वशिष्ठ जी अपना दंड आगे कर देते थे, उनका अस्त्र शस्त्र कट जाता था। तो उन्हें ग्लानी आई विश्वामित्र को, धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, ब्रह्म तेज का बल ही विशेष बल है, किंतु ब्रह्म तेज का बल आत्मिक स्थिति से पैदा होता है। और फिर उन्होंने फिर दोबारा तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्म तेज हासिल कर लिया और उनसे गौ ले ली। तो ज्यादा पुरुषार्थी कौन दिखाया गया? विश्वामित्र को। और
बाबा झंडा पाई कपिराज, झंडा पाई कपिराज
क्या होता है
ना, ऐसा चार घोड़ों का रथ देखते है ना महाभारी महाभारत युद्ध में, वहाँ वो चार घोड़ों का रथ में ऊपर एक झंडा होता है, उसमें कपिराज माना हनुमान को दिखाया जाता है, इसका अर्थ क्या है?
ये तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात है। जो ब्रह्मा की सोल है वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही है, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनको इंस्पिरेट करने का पार्ट है। जब तक वो है तब तक रथ सही चलता है। और अर्जुन को आ गया अहंकार तो ध्वजा उतार दी जिसमें हनुमान था। तो हारने लगे, यही अर्थ है।
बाबा चंद्रमाला में हर धर्म की चिंता चले हुआ है ना, आगे चंद्रमाला में भी देखो।
विजयमाला की आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म वालों के संसर्ग संपर्क में आती है क्या? कि संसर्ग संपर्क में आने से पहले ही अपने को स्वाहा कर देती है, तो छिलका होने का सवाल ही नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं और रुद्रमाला के मणके, उनके ऊपर तो दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है, संग के रंग का। इसलिए उस छिलके को डंडे से कूटना पड़े। और चलो फिर बोला।